एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है।
खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। मेरे दोस्तों ने मुझको एक दिन बुलाया।
मेरे दोस्तों ने मुझको एक दिन बुलाया।
ईसा मसीह का मुझको किस्सा सुनाया।
ईसा मसीह का मुझको किस्सा सुनाया।
मेरे दोस्तों ने मुझको मुझको हाँ मुझको हाँ मुझको मेरे दोस्तों ने मुझको एक दिन बुलाया। किसी का मुझको किस्सा सुनाया, सुन के वो बातें मेरा, सुन के वो बातें मेरा सर झुक गया है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना,
नई जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना,
शैतान की बातों में फिर से न आना,
शैतान की बातों में फिर से न आना,
नई जिंदगी से मुड़कर, मुड़कर हाँ मुड़कर,
हाँ मुड़कर,
नई जिंदगी से मुड़कर वापस न जाना, शैतान की बातों में फिर से ना आना। जन्नत का हमसे खुदा ने, जन्नत का हमसे खुदा ने वादा किया है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है,
खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है,
खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत सबसे जुदा है। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है,
खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। या खुदा, या खुदा,
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता, हमें ग्रहण कर, हमारे मनों को खोल दे और तेरे वचनों को सुनने और समझने के लिए मदद कर। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मेरे संग पिता, तेरे पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरा वचन को तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का संवाद का शीर्षक है पश्चाताप एवं दोष मुक्त के परिणाम। मसीह में विश्वास के द्वारा दोष मुक्ति के माध्यम से उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर मढ़ी जाती है। मसीह के स्थानापन के कारण हम परमेश्वर के साथ सही हैं। पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। पश्चातापी पापी होने के नाते हम पूर्ण और संपूर्ण क्षमा का अनुभव करते हैं, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है। महायाजक यहोशु का दर्शन दोष मुक्ति को खूबसूरती से दर्शाता है। यहोशु मैले वस्त्र पहने प्रभु के स्वर्गदूत के सामने खड़ा है जो पाप की अशुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह वहां खड़ा है, शैतान उस पर दोष लगाने लगता है। शैतान के आरोप सही हैं। यहोशु रिहाई के योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर अपनी दिव्य दया में शैतान को फटकारता है। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? जकरिया 3:2 कहता है, क्या यह मेरा प्रिय नहीं है जिसे मैं एक विशेष रीति से संरक्षित कर रहा हूँ? प्रभु ने मैले वस्त्रों को निकालने का आदेश दिया और घोषणा की, देख मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ, जकरिया 3:4 कहता है। हमारा प्रेमी और संपूर्ण दयालु परमेश्वर शैतान के आरोपों को अलग कर देता है और उस कम कपाते पापी को उचित या योग्य ठहराते हुए मसीह की धार्मिकता के चोले से उसे ढक देता है। जिस प्रकार यहोशू के मैले वस्त्र पाप को दर्शाते हैं, उसी प्रकार नए वस्त्र मसीह में विश्वासी के नए अनुभव को दर्शाते हैं। दोष मुक्ति की प्रक्रिया में स्वीकृत एवं क्षमा किया हुआ पाप परमेश्वर के निर्दोष व पवित्र पुत्र पाप उठाने वाले मेमने पर स्थानांतरित किया जाता है। अयोग्य पश्चातापी विश्वासी फिर मसीह द्वारा दी गई धार्मिकता को पहन लेता है। वस्त्रों की यह अदला बदली या दिव्य बचाव की कार्यवाही दोष मुक्ति बाइबल का सिद्धांत है। दोष मुक्ति विश्वासी ने क्षमा को अनुभव किया है एवं पापों से शुद्ध किया गया है। पश्चाताप और दोष मुक्ति के परिणाम क्या हैं? पवित्रीकरण, पहला है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण शब्द यूनानी भाषा का हेग्यास्मोस का अनुवाद है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अभिषेक, दोष मुक्ति, हेजियाजो से पवित्र करना, अभिषेक करना, दोष मुक्त करना, अलग करना। इब्रानी समकक्ष कादेश है आम उपयोग से अलग करना। सच्चा पश्चाताप एवं दोष मुक्ति पवित्रीकरण की ओर ले जाता है। दोष मुक्ति एवं पवित्रीकरण का निकट संबंध है, विशिष्ट परंतु कभी पृथक नहीं। वे उद्धार के दो चरणों को नामित करते हैं। दोष मुक्ति वह है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, जबकि पवित्रीकरण वह है जो परमेश्वर हमारे भीतर करता है। ना तो दोष मुक्ति और ना ही पवित्रीकरण गुणी कार्यों के परिणाम है, दोनों पूरी तरह से मसीह के अनुग्रह एवं धार्मिकता के कारण हैं। वह धार्मिकता जिसके द्वारा हमें दोषमुक्त ठहराया जाता है या मरी जाती है, वह धार्मिकता जिसके द्वारा हमें पवित्र किया जाता है या प्रदान की जाती है। पहला, स्वर्ग के लिए हमारा अधिकार है। दूसरा, स्वर्ग के लिए हमारी योग्यता है। पवित्रीकरण के 3 चरण जो बाइबल प्रस्तुत करती हैं, वे हैं, पहला, विश्वासी के अतीत में एक सिद्ध कार्य। दूसरा, विश्वासी के वर्तमान अनुभव में एक प्रक्रिया। तीसरा एवं अंतिम परिणाम जो मसीह के पुनः आगमन पर विश्वासी अनुभव करेगा। विश्वासी के अतीत में दोष मुक्ति के क्षण में विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से, 1 कुरिन्थियों 6:11, पवित्र भी किया जाता है। वह एक संत बन जाता है या जाती है। उस क्षण नया विश्वासी छुड़ा लिया जाता है एवं पूर्ण रूप से परमेश्वर का हो जाता है। परमेश्वर के बुलाहट के परिणाम स्वरूप रोमियों 1:7 विश्वासियों को संत कहा जाता है, क्योंकि वे मसीह में हैं। फिलिप्पियों 1:1 और यूहन्ना 15:1-7 को भी हम देख सकते हैं। यह इसलिए नहीं कि उन्होंने बेगुनाही की स्थिति प्राप्त कर ली है। उद्धार एक वर्तमान अनुभव है। उसकी दया ने, पौलुस ने कहा, नए जन्म के स्नान एवं पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें नया बनाने के द्वारा, तीतुस 3:5, हमें अलग करते हुए एक पवित्र उद्देश्य के लिए हमें अर्पित करते हुए मसीह के साथ चलने के लिए हमें बचा लिया है। दूसरा, परमेश्वर के परिवार में गोद लिया जाना। उसी समय नए विश्वासियों को ले पालकपन की आत्मा प्राप्त हुई है। परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान के रूप में गोद ले लिया है, जिसका अर्थ यह है कि विश्वासीगण राजा के बेटे और बेटियां हैं। उसने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है। मसीह के संगी वारिस रोमियो 8:15-17 कहता है, क्या ही सौभाग्य, सम्मान एवं आनंद है। तीसरा, उद्धार का आश्वासन। दोष मुक्ति विश्वासी की स्वीकृति का आश्वासन भी लाती है। यह अब परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ने की खुशी लाती है। चाहे किसी का पिछला जीवन कितना ही पापमय क्यों ना हो, परमेश्वर हर पाप को क्षमा कर देता है। और अब हम व्यवस्था के दोष और अभिशाप के अधीन नहीं हैं। छुटकारा वास्तविकता बन जाता है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जैसा कि कहता है इफिसियों 1:7। चौथा है, एक नए एवं विजयी जीवन का आरंभ। इस बात का एहसास कि उद्धारकर्ता का लहू हमारे पापी अतीत को ढांप लेता है, शरीर आत्मा एवं मन की चंगाई लाता है। अपराध बोध की भावनाओं को दूर किया जा सकता है, क्योंकि मसीह में सब क्षमा है, सब कुछ नया है। प्रतिदिन अपना अनुग्रह प्रदान करने से मसीह हमें परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित करना आरंभ कर देता है। जैसे जैसे उसमें हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी चंगाई एवं रूपांतरण विकसित होता जाता है, और वह हमें अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमारी विजय को बढ़ाता जाता है। उसका संसार पर जीत प्राप्त करना हमें पाप की दास्ता से छुटकारे का आश्वासन देता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:33 में यह प्रतिज्ञा है। पांचवा, अनंत जीवन का उपहार। मसीह के साथ हमारा नया संबंध अपने साथ अनंत जीवन का उपहार लेकर आता है। यूहन्ना ने पुष्टि की, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यूहन्ना 5:12। हमारे पापी अतीत का समाधान मिल गया है। अंतर्निवासी आत्मा के द्वारा हम उद्धार के आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं। मसीह के लहू के द्वारा जो शुद्धिकरण, दोष मुक्ति एवं पवित्रीकरण लाता है, विश्वासी एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जैसा कि हम यह प्रतिज्ञा पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में, कलवरी पर मसीह ने जो पूरा किया है उसके आधार पर उद्धार में एक पवित्र जीवन जीना शामिल है। पौलुस ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे नीतिपरक पवित्रता एवं नैतिक आचरण को समर्पित जीवन जिए। 1 थिस्सलुनीकियों 4:7। पवित्रीकरण का अनुभव करने में सक्षम बनाने के लिए परमेश्वर विश्वासियों को पवित्रता की आत्मा देता है। रोमियो 1:4। अपनी महिमा के धन के अनुसार पौलुस कहता है, परमेश्वर तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। इफिसियों 3:16-17। एक नई सृष्टि के रूप में विश्वासियों की नई जिम्मेदारियां हैं। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, पौलुस कहता है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। रोमियो 6:19। अब उन्हें आत्मा में जीवित रहना है। गलातियों 5:25। आत्मा से परिपूर्ण विश्वासीगण शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1। वे रूपांतरित किए गए हैं क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8:6। परमेश्वर के आत्मा के अंतर्निवास के द्वारा वे शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हैं। रोमियो 8:9। आत्मा से परिपूर्ण जीवन का उच्चतम लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:1। पौलुस ने कहा, पवित्रीकरण परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:7। दूसरे आगमन पर हम शारीरिक रूप से बदल जाएंगे। यह मरणहार देह अविनाश को पहन लेगा। 1 कुरिन्थियों 15:1-54 में हम यह बात पाते हैं। हालांकि दूसरे आगमन की तैयारी में हमारे चरित्र को रूपांतरण से गुजरना होगा। चारित्रिक रूपांतरण में परमेश्वर के स्वरूप का मानसिक एवं आत्मिक पहलू शामिल है। आंतरिक प्रवृत्ति जिसे प्रतिदिन नया किया जाना है, 2 कुरिन्थियों 4:16, और इसका हम तुलना कर सकते हैं रोमियो 12:2 से। प्रत्येक पूरी तरह से आत्मसमर्पित मसीही महिमा से महिमा तक बदला जा रहा है, जब तक कि दूसरे आगमन तक परमेश्वर के स्वरूप में उसका रूपांतरण पूरा ना हो जाए। मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता की जरूरत है। केवल सृष्टिकर्ता ही हमारे जीवन को रूपांतरित करने के सृजनात्मक कार्य को पूरा कर सकता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। जब हम मसीह के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब पवित्र आत्मा शारीरिक मानसिक व आत्मिक संकायों को पुनर्स्थापित करता है। 3:5। पवित्र आत्मा के कार्यों में मसीह को प्रकट करना और हमें मसीह की छवि में पुनर्स्थापित करना शामिल है। सृष्टिकर्ता का अंतर्निवास प्रतिदिन विश्वासियों को आंतरिक रूप से पुनर्जीवित करता है, उनके मनों को नया करता है और दिव्य स्वभाव का संभागी होना भी जरूरत है। मसीह की बहुमूल्य और महान प्रतिज्ञाएं उसकी दिव्य शक्ति को हमारे चरित्रों का रूपांतरण पूरा करने के लिए वादा करती हैं। 2 पत्रस 1:4। यह केवल मसीह के द्वारा हो सकता है। मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में जो रूपांतरित करता है वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को पहनना या उसका संभागी होना, रोमियो 13:14 और इब्रानियों 3:14 कहता है। पवित्र आत्मा का नवीकरण, तीतुस 3:5, यह हम में परमेश्वर के प्रेम की पूर्णता है। 1 यूहन्ना 4:12। पवित्रीकरण प्रगतिशील है। प्रार्थना एवं वचन के अध्ययन से हम परमेश्वर के साथ साथ संगति में निरंतर बढ़ते जाते हैं। उद्धार की योजना के बारे में मात्र बौद्धिक समझ ही पर्याप्त नहीं होगी। विश्वासियों को मसीह के शब्दों को आत्मसात करना है। जब हम जीवन की रोटी को पचा लेते हैं, हम मसीह की समानता में रूपांतरित हो जाते हैं। 1517 में जिस वर्ष लूथर ने अपनी शास्त्रार्थ के 95 प्रसंगों को विटेन्सबर्ग जर्मनी के किला गिरजाघर के द्वार पर ठोक दिया था, राफेल ने रोम में अपनी लोकप्रिय रूपांतरण की तस्वीर का चित्रण करना आरंभ किया था। इन दोनों घटनाओं में कुछ समानता थी। लूथर के कार्य ने प्रोटेस्टेंटवाद के जन्म को चिन्हित किया और राफेल की तस्वीर यद्यपि अनजाने में सुधार की भावना का प्रतीक बन गई। चित्र में दर्शाया है कि पहाड़ी पर मसीह खड़ा है और घाटी से एक राक्षस उसे उम्मीद से देख रहा है। इसको हम मिला सकते हैं मरकुस 9:2-9 में। शिष्यों के दो समूह, एक पहाड़ी पर दूसरा घाटी में, दो प्रकार के मसीहों को दर्शाता है। पहाड़ पर के शिष्य मसीह के साथ रहना चाहते थे। प्रतीत होता है कि उन्हें नीचे घाटी की आवश्यकताओं में दिलचस्पी नहीं है। सदियों से अनेकों ने संसार की आवश्यकताओं से बहुत दूर पहाड़ों पर स्वयं को स्थापित किया है। उनका अनुभव कार्य के बिना प्रार्थना है। दूसरी ओर घाटी के शिष्यों ने प्रार्थना किए बिना कार्य किए और प्रेतात्माओं को बाहर निकालने के उनके प्रयास असफल रहे। बड़ी संख्या में लोगों को शक्ति के बिना दूसरों के लिए काम करने के या दूसरों के लिए काम किए बिना प्रार्थना करने के जाल में कैद कर लिया गया है। इन दोनों प्रकार के मसीहों को स्वयं में परमेश्वर के स्वरूप को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। तो चलिए हमें ना केवल हम प्रार्थना करें पर प्रार्थना के साथ लोगों की सेवकाई करें। दोनों साथ साथ चलना चाहिए और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आइए हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को वास करने दे ताकि हम यह कार्य अपने जीवन में सफल करा सकें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि तूने हमें बुलाया है और हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तूने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए मदद कर और हम चाहते हैं पिता पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करे कि हम तेरे सामर्थ्य के द्वारा सही रास्ता में सफलवंत जीवन व्यतीत कर पाए। इसके लिए तेरा पवित्र आत्मा का हमें सामर्थ्य दे और सफल जीवन जीने के लिए मदद कर। जीवन को
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।